हूँ। मेरा नाम है अर्शन मोहंती। हम आगे इस पॉडकास्ट को कंटिन्यू करते हुए और एक एपिसोड के साथ। इस पॉडकास्ट में हमने 3D साउंड को यूज़ करने की कोशिश की है। इसको एक्सपीरियंस करने के लिए कोई भी हेडफोन्स या ईयरप्लग्स लगा लीजिए। तो इसी के साथ हम चैप्टर 4 की शुरुआत करते हैं। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, इसलिए हम लोग इसे 2 सेक्शन में कंप्लीट करेंगे। कोई भी छोटा मोटा बहाना बनाकर अपने कक्षे से निकल आना और साथ में एक घोड़ा गाड़ी भी ले आना। हमारे गली में कोई ऐसे जगह रुकना जहां हमें कोई एक साथ ना देख सके, योगी अमर को कहते हैं। अमर मित्र योगी के एक हाई स्कूल फ्रेंड हैं जो योगी के साथ हिमालय भागने का प्लान करते हैं। निकलने से पहले योगी को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना था अपने बड़े भाई का, क्योंकि उनके बड़े भाई को पहले से ही शक हो रखा था उनके भागने का, इसलिए उन्हें सारी प्लानिंग बड़े ही ध्यान से करनी थी। द एम्यूलेट, वो ताबीज़ जो मेरी माँ को एक साधु ने दिया था, वो अपने काम में लगा हुआ है, योगी कहते हैं। योगी अपने आप से कहते हैं, काश मैं उन हिमालयों के पहाड़ों में उन गुरु से मिल पाऊँ जिन्हें मैं अपने सपनों में कई बार देखता हूँ। अब कोलकाता में योगी और योगी के पिता परमानेंटली शिफ्ट हो चुके थे, जहाँ अनंत और उसकी पत्नी भी रहती थी। कोलकाता के उस भीड़ और आवाज़ में भी योगी बड़े ही आराम से अपने घर में डेली मेडिटेट किया करते थे और अपने आप को तैयार कर रहे थे हिमालय के भ्रमण के लिए। आखिरकार वो दिन आ ही गया। योगी रोज काम आने वाले सामानों को अपने साथ रखते हैं, साथ में एक भगवद गीता की कॉपी और लाहिरी महाशय की तस्वीर भी बैग में डाल लेते हैं। अगले दिन अमर मित्र के साथ वो चांदनी चौक जाते हैं और वहाँ से ही कुछ यूरोपियन कपड़े पहन लेते हैं ताकि भागते वक्त उन्हें कोई पकड़ ना सके। वो भी क्या दिन होंगे, अपने गुरु से हम कॉस्मिक कॉन्शियसनेस का अनुभव कर पाएंगे। हम में इतनी चुंबकीय शक्ति होगी कि हिमालय का शेर भी हमारा दुलारा पाने के लिए बैठा रहेगा। ये सुनकर अमर बड़ा ही खुश हो जाता है। योगी और अमर के साथ योगी का कजिन, जिसे योगी जतिनदा कहते थे, वो भी साथ में चलने को मिल जाता है। हम तीनों को अलग अलग टिकट लेना चाहिए, इससे किसी को शक नहीं होगा, जतिनदा कहते हैं। अमर और योगी को भी ये बात काफ़ी सही लगती है। स्टेशन पहुंचते अमर और योगी स्टेशन पर बैठे रहते हैं। बारी बारी करके सबको टिकट लेनी थी। जतिनदा पहले जाते हैं। करीब 15 मिनट बीत जाता है पर जतिन कहीं भी नहीं दिखता। जैसे ही 15 मिनट से आधा घंटा, आधा घंटा से एक घंटा हुआ, योगी और उनके दोस्त समझ चुके थे कि जतिन ने धोखेबाजी की है। अमर, हमें शायद घर लौट जाना चाहिए, योगी रोते हुए कहते हैं। अमर उन्हें कहता है, अरे मूर्ख, तू भगवान की इन छोटी छोटी परीक्षाओं से डर रहा है, आगे और बड़े परीक्षाएं आएंगे, क्या यही तेरी भक्ति है? इन सारी बातों से वो योगी को मना लेते हैं। सही समय होते ही बर्धमान से उन्होंने गाड़ी पकड़ी। मुगल सराय पहुंचते हुए उन्हें अपना ट्रेन बदलना था। योगी कहते हैं, अगर हम कभी पकड़े जाते हैं तो पूछताछ के वक्त मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा। अमर कहते हैं, मुकुंद, मेरी बस एक ही विनती है, एंड मैं जब बात करूं तुम बिल्कुल भी हंसना मत। मुगल सराय के बाद उन्हें काफ़ी सारे पूछताछ से गुजरना पड़ा। उन सारे पूछताछ में अमर अपने आप को थॉमस बताता है और योगी को थॉम्पसन। योगी बड़े ही मुश्किल से अपनी हंसी रोक पाते हैं। जैसे ही पूछताछ खत्म होती है, योगी और अमर दौड़कर छोड़ते हुए ट्रेन को पकड़ते हैं और ट्रेन की सीट पर बैठकर काफ़ी देर तक हंसते हैं। ट्रेन पकड़ते वक्त योगी ने एक टेलीग्राम पढ़ लिया था जो कि उनके भाई का था। उस टेलीग्राम में योगी, जतिनदा और अमर को ढूंढने का प्रस्ताव दिया गया था। ढूंढ लाने वाले को काफ़ी बड़ा इनाम भी रखा था। अमर, मैंने कहा था कि निशान लगाए हुए टाइम टेबल को घर पर मत छोड़ना, पक्का मेरे भाई ने उसे ढूंढ लिया होगा। सिर झुकाकर अमर योगी की डांट को सुनता रहा। जैसे तैसे ट्रेन में रात कटी, सुबह होते ही वो हरिद्वार में पहुंच चुके थे। अब पुलिस वालों को भी पता लग चुका था कि वो तीनों जो अब की दो में बन चुके थे, यूरोपियन कपड़े में ढके हुए थे। हरिद्वार में पहुंचते ही वो अपने आप को भारतीय कपड़े में ढक लिए, परंतु उनकी चालाकी ज़्यादा देर तक टिकी नहीं। उन्हें एक पुलिस अधिकारी ने पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। अमर और योगी के भाई को भी बुलाते हैं। उसी बीच योगी को पुलिस पूछते हैं, संन्यास में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प दिखाते हो तुम। योगी और अमर एक दूसरे की तरफ देखते हैं। पुलिस वाला एक साधु की कहानी बताने लगता है। दो दिन पहले की बात है, एक मर्डरर जो कि साधु के वेश में घूम रहा था, हमने उसे पूरे हरिद्वार में ढूंढा, परंतु उस दोपहर को जब हम जंगल में तलाशी ले रहे थे, जो बिल्कुल उस मर्डरर की तरह ही दिख रहे थे, मैं और मेरे कांस्टेबल ने उसका पीछा किया।
रुको
रुको का नारा लगाया, परंतु उन्होंने एक शब्द ना सुना। तेजी से भागकर मैंने उनका पीछा किया। ना रुकने पर चाकू से मैंने उनके कंधे पर प्रहार किया। इससे बहुत ही तेज चोट आई उन्हें। उनका हाथ लगभग शरीर से अलग ही हो चुका था, बस एक छोटे से मांस के टुकड़े से लटका हुआ था। परंतु ना ही कोई चीखने की आवाज़ आई, ना ही चिल्लाने की। उनके सामने मैं जा पहुंचा और जब उजाले में मैंने उनका चेहरा देखा, मुझे अपने गलती का एहसास हुआ। मैं समझ चुका था मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई है। परंतु उसके बाद ही बहुत ही अजीब घटना हुई। साधु ने तुरंत लटकते हुए हाथ को उठाया और अपनी जगह पर लगाया। बस तुरंत ही रक्त बहना रुक गया। उन्होंने मुझे 3 दिन बाद आने को कहा और मैं जब 2 दिन पहले उनके पास गया, उनका घाव पूरा सूख चुका था। चोट का कोई भी दाग उनके हाथ पे नहीं था। साधु कहते हैं, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया कि मेरे इस चोट से तुम्हें पछतावा ना हो। अब जब तुमने देख ही लिया कि मेरा हाथ बिल्कुल ठीक हो चुका है, इस बात का पछतावा मत रखना अपने दिल में। ये कहकर साधु उस पुलिस वाले को आशीर्वाद देते हैं और अपने रास्ते निकल पड़ते हैं। तो इस एपिसोड को हम यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। अगर ये पॉडकास्ट आपको इस मोटी किताब को पढ़ने में हेल्प कर रहा है, तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि बाकियों तक भी ये मैसेज पहुँच पाए। मेरे को रिसेंटली बहुत सारे DM आए कि वो कहना चाहते हैं कि ये किताब पढ़ के क्या हम योगी बन जाएं। मैंने रिसेंटली एडोल्फ हिटलर की ऑटोबायोग्राफी पढ़ी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम एडोल्फ हिटलर जैसे बन जाओ। हमारा मोटिव ये है कि हम जितने भी ग्रेट माइंड्स हैं, उनकी थिंकिंग, उनकी पर्सपेक्टिव देखना चाहते हैं, अपने आप को एजुकेट करना चाहते हैं, अपने आप को नॉलेज प्रोवाइड करना चाहते हैं। हमारा मेन मोटिव रहना चाहिए कि हमें एक वॉरियर मेंटेलिटी डेवलप करनी है। एक वॉरियर क्या करता है? वो अपने आप को पहले ट्रेन करता है, अपने आप को रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करता है। ऐसा नहीं कि वो सीधा वॉर फील्ड में जाके ही अपने आप की प्रैक्टिस शुरू करता है कि सामने लड़ाई चल रही है तभी वो अपने हथियार शार्पन करता है। वो पहले से ही अपने आप को प्रिपेयर करता है कि लाइफ में जितने बड़े भी प्रॉब्लम हैं हम उसे आराम से सॉल्व कर सकें। हमें अपने आप को अच्छे इक्विपमेंट्स यानी अच्छे स्किल सेट्स, उसके साथ साथ पॉजिटिविटी से अपने आप को एम्ब्रेस करना है, अपने आप को बनाना है। तो इसके साथ हम इस पॉडकास्ट को ख़त्म करते हैं। रात काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो कुछ दिन में वापस मिलते हैं पार्ट 2 के साथ। तो मिलते हैं इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए।